چپو بنانے والے، جس میں آخرت کی کشتی جو ہے وہ چل سکے، یہی کامیابیوں کے نسخے۔ اب یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے 192 سے لے کر 227 تک پوری سورت پہ بات ہے۔ آپ کو دیکھیں سورہ شورہ طویل ترین سورت ہے، اس میں سے اتنے لیسنس نکلتے ہیں، اور خاص طور پہ جب میں اس کو آپ کو پڑھا رہی ہوں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کا ماحول اتنا یاد آ رہا ہے کہ کتنا سٹریس تھا، گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ایک لمبا طریقہ علاج ہے سورہ شورہ میں، اور اللہ کے نبی اس کو جیسے لیتے ہوں گے میں اور آپ تو ویسے لے ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں سکون ہے، باہر سکون ہے، ہماری ضرورت کی چیزیں پوری ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں کا کیا ہوگا۔ تو لہٰذا اب اگلی آیتوں کو، ان ساری واقعات کو سننے کے حساب سے سنیے، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے دوسروں کے حالات سے نصیحت لینے والا بنا دے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ السعید من وعید بغیرہ، عقل مند وہ ہے جو دوسرے کے حالات سے نصیحت لے لے۔ تو دوسری قوموں کے حالات سے نصیحت لینی ہے تو ایز اے نیشن ہمیں اسی عمل کرنا پڑے گا۔ آج اگر امت مسلمہ بھی اس پہ عمل کر جائے نا، جو کچھ سن رہی ہے اور جو سزائیں، ہمیں یقین تو ہو جائے کہ یہ سب سچ ہے، اور اللہ کی پکڑ آج نہ آئی تو قیامت کے دن پہ ٹل گئی تو کبھی کرپشن ہمارے ملکوں میں رہ نہیں سکتی، نافرمانیاں رہ نہیں سکتی۔ اور وہ کیوں نہیں ہے، لوگ کیوں نہیں کر پاتے، وہ مسنگ فیکٹر ہے جس کا ذکر اب آیت نمبر 192 میں۔ پیچھے تھوڑا سا سورت فرقان کا اینڈ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ سورت فرقان میں بھی تنبیا کے قصے تھے نا، شروع میں ایک کردار دکھا دیا، بیسک پرسنالٹی آف اے مومن، قد افلح المومنون، بیچ میں انبیاء کے قصے، اور آخر میں جاہد ہم بھی ہی جہادن کبیرہ۔ یہاں بھی بالکل وہی انداز ہے۔ اب آپ کو نا قرآن پاک کے آگے بڑھتے بڑھتے یہ مزاج ہر صورت کا دکھے گا۔ شروع میں بات جو چھیڑی جاتی ہے نا عموماً، وہ کردار سازی ہے، قرآن کی خوبیاں، جیسے اب اگلی صورت دیکھیں گے بالکل قرآن کی انہی خوبیوں سے شروع ہوگی جس پہ یہ صورت پوری ہو رہی ہے، اور لوگوں کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بدلو۔ تو آئیے ذرا اس کو بھی اسی انداز سے پڑھیں گے کہ جس میں ہم اس کو ایک دفعہ گو تھرو کریں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک مضمون کی باتوں میں سے عمل کی بات لیں گے۔ آیت نمبر 192، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، وہ کیا ہے، یہ سارے قصے، یہ جو آپ نے سن لیے، جو آپ تک پہنچائے، یہ کہاں سے آئے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی سورس آف دس نالج از اللہ کی ذات رب العالمین۔ کیسے ہے اس کو پڑھیں، پھر میں آپ کو ایک چین بنواتی ہوں انشاءاللہ۔ نزل بہ روح الامین، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین، کون ہے، لکھ لیجئے جبرائیل امین، کہاں اترے، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر۔ اترا کیوں ہے، لیتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کی لینگویج کے اگلی آیت، بلسان عربی مبین، یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں۔ اگلا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اچھا یہ کتاب کیا اس کا کبھی پہلے بھی ذکر ہوا، کہا یس، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی اس کے بارے میں پیشن گوئیاں ہو چکی، اس کا ذکر موجود ہے تورات، انجیل اور پرانی کتابوں میں بھی تھا۔ اچھا اس کی کوئی دلیل ہے، تو کہا اولم یکن لہم آیتا، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے، کہ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اس کو علماء بنی اسرائیل بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا، اور اسی وجہ سے ان مکہ والوں سے کہو کہ تمہیں اگر یقین نہیں آ رہا اس کی سچائی کا، تو بنی اسرائیل یعنی یہود جو مدینہ میں بیٹھے ہیں، جا کے ان کے صحیح علماء سے پوچھو، ان کو اس کتاب کے بارے میں پتہ ہے، جس کا تک یہ سچی بات ہے۔ سوال ایک ہی ہے کہ ساری شریعت پچھلی جو تھی وہ ترجمیوں پہ اتری، تو یہ قرآن پھر عربوں کے پاس کیوں آیا؟ تو فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَجَمِينَ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی عجمی پر، مراد ہے کہ تمہارے خیال کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ اترتا، کسی غیر عرب پہ اترتا، کیونکہ عجمی کہتے ہیں غیر عرب کو، عجمی اصل میں گونگے کو کہتے ہیں، اور عربوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا مان تھا کہ عربوں کے سوا ہر ایک کو گونگا کہتے تھے، तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारा ख्याल है कि मोहम्मद सल्लम इस कुरान को किसी दूसरे से सीख सिखा के आ रहे हैं, तो बताओ अगर किसी अजमी पे उतरता, फ़करहू अलैहिम मा कानू बिही मोमिनीन, और वो इससे इनको पढ़कर सुनाता, तब भी वो इस पर ईमान लाने वाले नहीं थे, ना मानने के सो बहाने। कुरान किसी ऐसे शख्स पे और पे नाजिल होता जिसकी मादरी जबान अरबी ना होती, फिर अगर ऐसा शख्स इन्हें अरबी कुरान पढ़कर सुनाता तो ये तो एक मौजज़ा था ना इस बात का कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते। यहाँ तक बात तो आगे भी है, लेकिन आप इन सारी आयतों के नंबर लिख लें, कुरान का मुकम्मल तारुफ और उसका नाम। कोई आपसे पूछ सकता है कुरान पाक का पूरा नाम क्या है, तो वो यही है। क्या है? अब आप इस ऊपर पलटिए, वइन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन। कुरान की जो फिकही डेफिनेशन है वो यही है, तन्ज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, सबसे पहला सोर्स अल्लाह की ज़ात, बिवासितति जिब्रील, नज़ल बिहि रूहिल अमीन, बीच का सेकंड कैरियर क्या है, जिब्राइल अमीन, यानी अल्लाह, फिर जिब्राइल, और कहाँ, अला कल्बी का, आपके दिल मुबारक पर, तो तीसरा फिर इसका रिसेप्टर है कल्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह बकरा की आयत 193 आपको याद होगी, जहाँ जिब्राइल की दुश्मनी का जिक्र था, तो का कुल मन का नदुबल जिब्रील फ़ैन्नहु, जो जिब्राइल का दुश्मन है तो वो सुन ले कि जिब्राइल तो इस कुरान को आपके दिल मुबारक पर नाजिल करता है। तो क्या पता चला कि कुरान सबसे पहले अल्लाह ताला के कलाम था, जिब्राइल बीच में एक कैरियर थे, अमीन थे, रूहुल अमीन थे, उन्होंने इसमें कोई कमी बेशी नहीं की, कुछ निकाला नहीं, कुछ डाला नहीं, और उतरा कहाँ, अल्लाह के नबी के दिल पर। सवाल पैदा होता कि अल्लाह के नबी के दिल पर क्यों उतारा? देखिए, नबी सल्लम की ज़ात असल में वही को जज्ब करने की जो कैफियत थी ना, वो आपका दिल था। आप कह लीजिए कि कल्बे मोहम्मद रिसीवर ऑफ द रेवोल्यूशन था। कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो रखते हैं ना, कोई कंटेनर होता है, यानी कल्बे मोहम्मद कंटेनर था वही को कंटेन करने का। बुनियादी तौर पर इंसानी इल्म की दो किस्में होती हैं, एक इल्म वो होता है जो इंसान को हवास खमसा से मिलता है, 5 senses, सुनना, देखना, चखना, हाँ, ये कौन सा इल्म होता है, एक्वायर्ड नॉलेज, इक्तसाबी। ये दुनिया के इल्म सारे ऐसे ही हैं, इसके लिए इंसान कोशिश भी करता है, मेहनत करता है। इसको हासिल करने का तरीका क्या होता है कि अपनी 5 senses से मालूमात हासिल करे और इनको प्रोसेस करने के लिए ब्रेन या अक्ल में, दिमाग में लाए, ख़त्म, बात पूरी हो गई। ये इल्म वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, चेंज भी हो जाता है। जैसे आजकल नई नई साइंसेस ईजाद हो रही हैं, नए नए उलूम सामने आ रहे हैं, पहले वो नाम सुने भी नहीं थे, आज उन नामों में PhDs हो रही हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके मुकाबले दूसरा इल्म है, और ये जो पहला इल्म है ना, एक्वायर्ड नॉलेज, इस पर अब सारी बात जाके सूरह नमल में होगी, इंशाल्लाह उसके इंट्रो में आपको लिखाऊंगी। दूसरा वो इल्म होता है जो अल्लाह की तरफ से बराह रास्त इंसान के दिल और उसकी रूह पर होता है, इसको रिवील्ड नॉलेज कहते हैं, वही का इल्म कहते हैं। अब दुनिया का इल्म सिखाने वाले तो बहुत सारे टीचर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी टीचर को देखेंगे तो उसका बायोडाटा पढ़ लेंगे, उसकी CV पढ़ लेंगे, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, कितना एक्सपीरियंस है। इंसानों का इल्म इंसानों के ज़रिए पहुँचता है, ये अल्लाह का इल्म है, तो इसको भेजने और पहुँचने के बीच में इंसान नहीं होते, फरिश्ता होता है, और ओनली वन फरिश्ता, जिब्राइल अमीन। हर नबी पर वही जिब्राइल के ज़रिए से आई, इसको बहुत सिक्योर किया जाता है, क्योंकि शयातीन इस रिवील्ड नॉलेज के दुश्मन होते हैं, वो चाहते हैं किसी तरह से इन फाइलों को करप्ट कर दिया जाए जिनके ज़रिए से लोगों को हिदायत का पैगाम मिल रहा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इस तरह से सिक्योर तरीके से इल्म को भेजा, अल्लाह सुबहान तआला का कलाम रूहुल अमीन बामानत, जिस तक किसी की पहुँच भी नहीं, और लाकर उन्होंने जल्दी से वही का दरवाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पे खोला, उसमें अंदर इल्म गया और फटाफट उस दरवाज़े को बंद कर दिया। और अल्लाह के नबी के बाद अब वही का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। मेरे जहन में आ रहा है जैसे बहुत कीमती डॉक्यूमेंट्स जब गवर्नमेंट ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करने होते हैं ना, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी होती है, शायद आपको हमें तो पता भी नहीं चलता होगा, एक दफ़ा किसी छावनी से हम गुजरे या कहीं कोई फौज के लोग थे, तो उनके जरिए बहुत सारी ऐसी बातें पता चली थी कि जब वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है या गवर्नमेंट के कोई एसेट्स ऐसे होते हैं ना, तो उसके लिए कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटीज़ होती हैं, और रातों को जाते हैं और आगे पीछे के कदम पे फौज होती है, और उसको लेके सीधा जाते जाते समझे साथ साथ उनको कस्टडी में रखा जाता है, और जहाँ जाना है वहाँ जाके उसको सील बंद लेके जाते हैं, खोलते नहीं। इम्तिहान के पेपर देख ले, सामने सील खोलते हैं लोग। वो तो इंसानी मामले ना। ये कुरान हकीकत में ऐसा इल्म है कि जिसको अल्लाह ने फुली फुली सिक्योर किया हुआ है। दिल ही वो बर्तन है जो इस वही को कंटेन करता है। जो लोग इसको अकल पे रखेंगे वो फेल हो जाएंगे। आप में से किसी का सवाल था मेरे पास कि अच्छा जी, ये रजम की सज़ा कुरान में कि हदीस में, अच्छा शादीशुदा की उसमें, ये अकल के ऊपर इसको पर रखेंगे। जिसने कुरान का कोई हुक्म सुना और अकल में उसको डालने की कोशिश की, वो इस आयत को समझ ले। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दिल ही इस कुरान की हिफाजत कर। जिसका दिल इसको पालेगा वो नहीं पूछेगा पर्दा क्या, तो निकाब क्या, तो हिजाब क्या, तो दाढ़ी क्या, तो वो क्या। और जब तक नज़ूले किताब कल पर ना हो, अमल नहीं आता। अमल में ढलता ही नहीं है इल्म जब तक दिल में ना आए। जो चीज़ दिल को लग जाती है ना, उसे हासिल करने के लिए फिर इंसान कोशिश करता है। सूरह मोहम्मद में हम पढ़ेंगे, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या उन्होंने कुरान पे गौर नहीं किया। और हम कुरान में भी देखेंगे, जहाँ ये एक्वायर्ड नॉलेज की बातें हैं वहाँ जहन की बात है, अकल की। जहाँ कुरान की बात आएगी इसके अंदर, आप देखेंगे फुआद का लफ्ज़ आएगा, अफिदा, फुआद, दिल, दिली जज्बों के साथ ये कुरान समझ आता है, वरना नहीं आ सकता। अल्लाह ताला कहते हैं ये किताब ऐसे ही नहीं। फिर लोगों ने, आप देखिए कि इस इल्म को पाने के कई मुख्तलिफ तरीके पाए। बस आप देखिए कि कशफ, इल्हाम, इल्का करना, सच्चे ख्वाब, अल्लाह जिसको देना चाहे दे दो। आप और मैं वजीफे करके ऐसे कामों में शरीयत की हदूद से आगे नहीं बन सकते। सारी बात का खुलासा यह है कि कुरान अल्लाह के नबी के दिल पे आया, तो मुझे भी आपको भी इसको अपने दिल पे लेना है। दिल पे होगा ना तो ना गर्मी ना सर्दी, ना छुट्टी ना कुछ, कोई मुश्किल नहीं। जो हो सौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जिस दिन हमारे दिल को यकीन आ जाएगा कि ये है मालिके कायनात का कलाम जिसकी मुझे ज़रूरत है, फिर नहीं कोई रोकेगा आपको। जैसे आप बाथरूम में जाने वाले हों, कोई आपको रोक सके? सबको पता है कि नहीं, डपीचे हो जाओ, रास्ते से हट जाओ। आप अपने बच्चों को स्कूल जाने से कभी रोकती हैं? अपने शौहरों को कभी जॉब से छुड़ा कर शॉपिंग पे जाती हैं? तो लोग भी आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। जिस दिन आपका दिल मुसलमान हो गया, यही बात इधर कह के अला कल्बी का, जब तक दिल के कुफल नहीं खुलेंगे अमल नहीं बदलेगा। सूरत हज आयत 46 में हम पढ़ चुके, फ़ैन नहला तामल अबसार, बस बेशक आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूब, बल्कि दिल अंधे होते हैं जो के सीनों में है। अच्छा, मुसलमानों के दिल ही अंधे हैं। सूरत अलराफ अल्लाह ताला कहते हैं कि किताब व नुनज़िला अला कल्बी का, आपके सीने पर ये किताब नाजिल की गई ताकि आप लोगों को डराएं। फिर अगली खूबी देखिए, अब इस एक आयत में से आपको कितने कुरान के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये पूरा उलूमुल कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम उलूमुल कुरान का मौजू पढ़ाते हैं कि कुरान है क्या, ये आयतें यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तारुफ है। अगला देखिए, बिलिसानी अरबी मुबीन, असल कुरान अरबी ज़ुबान में है, तर्जुमा नहीं। ये जो आप और मैं कहते हैं ना तर्जमातुल कुरान, ये तर्जमातुल कुरान नहीं है, ये तर्जमानीउल कुरान है। तर्जमानी और तर्जमे में क्या फ़र्क है? तर्जमा होता है ट्रांसलेट। बस आप देखिए, आपको इंग्लिश नहीं आती, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए, तो बीच में आपको मिलता है वहाँ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है? जो आप बताती हैं ना, वो अपने लफ्ज़ों में उसको इंग्लिश में डॉक्टर को बताता है। ये होती है तर्जुमानी। जो बात आप नहीं बता सकी वो उसने डॉक्टर को बता दी, इट्स पॉसिबल। लेकिन अगर आपके बोले हुए उर्दू के एक एक लफ्ज़ का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके वो डॉक्टर को बताने लगे, इट्स नॉट पॉसिबल। कुरान का तर्जमा मुमकिन ही नहीं। असल कुरान अरबी, इसीलिए आपको पता है कि नमाज अरबी में है। अगर आप पूरी नमाज उर्दू में पढ़ के एक्शंस कर लें, वो कुछ और तो हो जाएगा लेकिन वो नमाज नहीं होगी। फिर इसमें अहकामात बदल जाते हैं। कैसे? कि अरबी का कुरान है, प्लेन अरबी है, पीरियड्स में आप नहीं पकड़ सकती जब तक के बीच में उसके और आपके बैरियर ना हो। वो कुरान जिसमें तर्जमा है या हाशिया है या तफसीर है उसको पकड़ लीजिए एहतियात के साथ कि अरबी पे हाथ ना पड़े। फिर आप देखिए जुनाबत के मसाइल, जुनाबत की कैफियत जबकि गुसल वाजिब है उसमें इंसान कुरान नहीं पढ़ सकता, तो कुरान की जगह फिर सुन ले कुरान या फिर उसकी सारी लेके। तो असल कुरान अरबी का कुरान है। हम अपने ऊपर लेकर सोचें, इतने साल हमारी ज़िंदगी गुजर गई अभी तक हमने इसकी वो शीरीनी और इसके अल्फाज की मिठास नहीं पाई। अब तो ये साल 1.5 साल अब सब कुछ साथ करने को मिल रहा है ना, एक पकड़े तो दूसरा छोड़ते हैं, दूसरा पकड़े तो तीसरा। पिछली ज़िंदगी किधर है? 25 साल किधर गए मेरी ज़िंदगी के? 30 साल, 35 साल मैंने क्या किया अभी तक? क्या मैंने इस अरबी मुबीन को नहीं समझा? और लफ्ज़ मुबीन कितना खूबसूरत है, अपने मौक़िफ़ को वाज़ह करने वाली। मैं आपको इसकी गवाही दे सकती हूँ कि बस दफ़ा पढ़ाते वक्त जब कुरान की एक आयत सामने होती है और उसकी तफसीर में सिर्फ एक दूसरी आयत पढ़ देना तो बात उससे ज़्यादा अच्छी समझाई जा सकती है जो मैं शायद 15 मिनट उस पर बोलूँ। और अक्सर मैं सोचती हूँ और मेरी ये ख्वाहिश भी आती है कि कभी मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जो पूरा कुरान पढ़ चुके हैं और उनको बस एक आयत के बदले में आयतों के साथ आयतें ही जोड़ जोड़ कर सिखाऊं, क्योंकि हमारी ज़ुबान में तो वो असर ही नहीं है। हम तो और लंबी बात कर देते हैं। कभी आप हरम में जाएं तो खुतबा सुने किसी भी अरब मस्जिद में, यहाँ तो नहीं इतना मौका मिलता आपको, अरबों में जैसे सऊदी अरब या दुबई आप जाएं तो आप जुमा पढ़ने जाएं। बिलीव मी कि आम बंदा हम में से ये सोचता है कि ये कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन वो करते क्या है, एक आयत पढ़ते हैं ना तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुरान की आयत, फिर उसके साथ दूसरी आयत। यानी आप कहते हैं ना मैं अरबी नहीं आती, अगर आपको ये कुरान की तफसीर आती है ना, तर्जमा आ गया है, आप इंशाल्लाह जब उमरा या हज पे जाएंगे ना आप सुनेंगे आपको 98% खुतबा समझ आएगा। कुरान पढ़ते हैं वो, मुझे ज़रूरत पड़ रही है ना कि तंजील से क्या मुराद है, कल्ब से क्या मुराद है, फुआद क्या है, मैं उर्दू में बताऊंगी। तो जिसको अरबी समझ आ गई है कुरान की एक आयत पढ़ेंगे उसके बदले में दो आयतें और पढ़ेंगे, फिर तीसरी पढ़ेंगे, फिर बिल्कुल वो बीच में हल्के हल्के जॉइंट्स होते हैं। बहुत कम अरबी बोलते हैं अरब लोग क्योंकि कुरान खुद बोल देता है, क्योंकि ये अरबी ये मुबीन है। अल्लाह अकबर, इसका हक हम नहीं अदा कर सकते। फिर इसके तारुफ़ की अगली नशिस्त वइन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, ये भी आप बोलेंगे कुरान के तारुफ़ में, कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल करता है जिब्राइल के वास्ते से मोहम्मद सल्लम के कल्ब पर, यह अरबी में है और इसका ज़िक्र पिछली किताबों में भी मौजूद था और इसको बनी इसराइल के उलमा भी जानते हैं। यहाँ पर कुरान का तारुफ़ पूरा होता है। एक स्ट्रेच में बोल दूँ, कुरान क्या है? रब का तंजील शुदा अभी वास्ता जिब्रील अला कल्बी मोहम्मद बी लिसानी अरबीशी और जिसको जानते हैं उलमाए बनी इसराइल। जब एक किताब का तारुफ़ ये है तो बताइए कि इसके बाद फिर इधर उधर होने की इजाज़त क्या है। लफ्ज़ इन्नहू में बाज़ ने कहा कि कुरान और उसकी तालीमात का जिक्र है, बाज़ कहते हैं कि इन्नहू से मुराद मोहम्मद सल्लम भी है। दोनों बातें ठीक है कि मोहम्मद सल्लम का जिक्र भी पुरानी किताबों में मौजूद था, जैसे सूरह सफ़ 6 में आता है व इसकाल ईसा इब्न मरियम, वो वक्त जब ईसा इब्न मरियम कहेंगे तुम में से कौन है जो इस रास्ते में, और हज़रत नबी सल्लम का तस्करा। इसी तरह सूरह बकरा 89 में भी यही बात है, वलम्मा जाऊँ किताब मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम वकान मिन क़ब्ल यस्तफ़तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू, कि जब आ गई उनके पास वो किताब अल्लाह की तरफ से तस्दीक करती हुई उस चीज़ की जो उनके पास है, तो थे वो इससे पहले फतह की दुआएं करते उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कुफर किया, लेकिन फलम मजाहम मारफू कफरू भी, मगर जब वो किताब आई जिसको पहचान भी गए तो फिर उसी का इनकार कर दिया। ये लोगों का जुल्म होता है, जिन चीज़ों की पहले तमन्नाएं करते हैं फिर वो चीज़ नज़र भी आ जाए तो उसको लेने की कीमत और कुर्बानी अदा ना करने की वजह से उसको पूरा ले नहीं पाते। तो बात का खुलासा क्या है, कुरान हो या साहिब कुरान हो, इसका तस्करा पहली किताबों में मौजूद था और मक्की सूरतों में इस तस्करे से मक्का वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत की कदर का एहसास दिलाना था। यारिफूना हुकमा यारिफूना अबनाहुम, पीछे पढ़ चुके हैं दूसरे पारे के दूसरे रुकू में, निजाशी आपको पहचान गया किधर बैठा हुआ था, इसीलिए कि या लमहुल उलमाओ बनी इसराइल। अदी बिन हातिम आपको होता है बिकते बकाते कहाँ से आए थे मदीना अल्लाह के नबी को पहचानने के लिए, और इन्होंने अल्लाह के नबी को पहचाना आपको पता है कैसे था, किसी सुना हुआ आपने वाकई इनका मुसलमान होने का? ये क्रिश्चियनिटी में अल्लाह के नबी की सारी अलामतें पढ़ चुके थे, पता थी इनको चूँकि क्रिश्चियन थे, कि वो तोहफा कबूल करेंगे, सदका नहीं खाएंगे और अखलाक बड़ा अच्छा होगा और आपकी इधर पुश्त पे एक निशान होगा जिसको मोहरे नबूवत कहते हैं। तवील वाक्य है, आप इनका जाके पढ़ना चाहें या सुनना चाहें तो सुन ले। हजरत साहबा के दरख्शां पहलू में इनका किस्सा सुनाया होगा हमने। तो वहाँ गए, इन्होंने जाके अल्लाह के नबी के सामने कुछ तोहफा पेश किया, कहा अल्लाह के नबी ये सदक़े की कुछ चीज़ें आप कबूल करें। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हम सदका नहीं लेते। एकदम इनके अंदर रग फटी हो कि पहली निशानी तो ठीक है, फिर अंदर से एक और चीज़ निकाली, कहा अल्लाह के नबी ये मैं आपके लिए तोहफ़तन लेकर आया हूँ। कहा अच्छा तोहफे मिलाए तो दे दो, दूसरी निशानी पूरी होगी। आप सब कुछ कर चुके थे, अब सिर्फ ये अल्लाह के नबी की पुश्त से वो निशान देखना चाहते थे। अब क्या कहें, कमीज़ उतारे? ज़रा सोचे, आप कैसे कह सकते हैं कि हमें तो भी पता ही नहीं ये किताब इतनी अहम है? जिनको तड़प है वो कहाँ से आते हैं? और इतनी, और अखीर वाकई सबब ऐसा बन गया कि अल्लाह के नबी ने कमीज़ उतारी, पीछे वो काले रंग की मोहर नबूवती, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इतने बेफैज़, हम इतने बेहिस, हम इतने मजबूर, हम इतने नाजुक मिजाज, हम इतने लाड देखने और दिखाने वाले, इस किताब की को कदर ही नहीं। हम कहते हैं टेक भी ना हमें मना करे कोई लगाने से, हमारे घर में ही आ जाए, हमारे पास ही आ जाए, और फिर भी हमारा मूड होगा तो फिर करेंगे ये काम। आज क्या ये किताब हमारे घरों में नहीं आई हुई? सच बताएं, जिसको आप कहना चाहिए कि मेरी डोर नॉब्स के साथ ये लटक रही है, फिर भी कितनों को जरूरत है? कहाँ वो सफ़र थे, कहाँ वो चीज़ें थी? तो असल बात यह है कि ये वो किताब है। अल्लाह ताला कहते हैं कि अफ अभी हाजल किताब ही, क्या तुम इस किताब के साथ सुस्ती बरतते हो? तुम्हें क्या हो गया, तुम इसके बारे में सोचो। और अल्लाह ने मक्का वालों पे ये जितनी हुज्जतें तमाम की हैं ना इस सूरत में, ये अब सब का इकट्ठा एक किस्म का गुबार आ रहा है कि तुम इतने खुशकिस्मत थे, लेकिन आप देखो कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास आकर तुम्हारे लिए उस इल्म के रास्ते को आसान कर दिया। यहाँ जो उलमा बनी इसराइल से पूछने का जिक्र है, तो मक्का वाले अपने मजहबी मामलात में उलमा बनी इसराइल से रजू करते थे, जबकि अल्लाह के नबी नहीं आए थे, उनके हवाले देते थे, क्योंकि अपना दीन तो था ही नहीं। अल्लाह कहता है कल तक उनसे पूछते थे, आज यहाँ मौजूद आ गया, हो गया, लेकिन तुम मानते नहीं हो। वला नज़ल ना वला बाद दिला जमीन, अगर हमने इसको किसी अजमी पे उतारा होता, गैर अरब और गैर फसीह को कहते हैं, ख्वा अरब हो या गैर अरब, दोनों बातें। अगर पहला मानी लेना अजमी का उजम से, तो मुराद है गूंगा, तो मुराद है कि ये नबी अरब की बजाय गैर अरब होता। अपनी सेंस में हम इसको यूँ समझ लेते हैं कि तुम्हें अपनी ज़ुबान में पढ़ने का मौका ही ना मिलता, तो फिर किसी इंग्लिश, किसी पर्शियन, किसी फारसी को सुनते तो तुम्हें समझ आती? आता है मज़ा? इवन इंग्लिश का हम लेक्चर सुन भी लें, लेकिन जो उर्दू सुन के मज़ा आता है वो आता है? ये अल्लाह सिखा रहा है। कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपनी ज़ुबान में इल्म मिल रहा है, एक मानी ये है। और दूसरा मानी के उस्ताद भी अरब मिला, और है भी वो कौन सा आजिम। आजिम कहते हैं गैर फसीह को, जो अपनी बात खोल ना सके, यानी बाज़बा ज़ुबान ठीक होती है सबकी, बात करने वाले को बात समझानी नहीं आती। या आप इसको यूँ कह लें कि उर्दू में ही कोई पढ़ाए, लेकिन हर उर्दू में पढ़ाने वाला अपनी बात को उस तरह नहीं पेश कर पाता। ये मुराद है कि एक तो ये नबी अरब है, और अरब होने के बाद इसको बात भी इतने सलीके से करने आती है कि तुम्हें फ़ौरन समझ आती है, और तुम इतने बड़े बने हुए हो कि तुम इस बात की कदर ही नहीं करते। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन अफसहुल अरब, मैं अरब में सबसे फसीह हूँ। हालांकि देखिए, किसी मस्जिद मदरसे का रुख नहीं किया, कोई स्कूल में नहीं गए, कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। अल्लाह अकबर, सूरत अल अराफ 157 में भी जिक्र है, अल्लज़ीन यत्तबिउन अर्रसूल अल उम्मीश, अनपढ़ उम्मी शख्स की पैरवी करने वाले लोग जानते थे कि ये सच्चा रसूल है। सूरत फुसिलत आयत 44 में भी यही बात है। तो बात यह है कि मानते तो थे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए अल्लाह सुभान व तआला यही बात कहते हैं, फ़करा अलैहिम मा कानू बिही मोमिनीन, बस वो इन पर पढ़ता तो ये फिर भी उसकी बात ना मानते। वजह क्या? अब वजह है आयत 200 में, ये सारी हुज्जतें तो अल्लाह ने पूरी कर दी थी, फिर क्या हो गया इन मक्का वालों को? का कज़ालिक सलकना हुफी कुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हमने दाखिल कर दिए इस इनकार को मुजरिमों के दिल में। एक मानी तो इसका ये बनता है, सलक ना हो कलव सलका, ये जो सलक है ना, ये वही है जो आप और मैं सिल्क के तौर पे कहते हैं, तार, फाइबर, रेशम। अब आप इसको जहन में लाइए, इस आयत को समझ लेना, तो आप एक तार सी लेके, आप खाना खा रहे हैं और मुंह में बाल ही क्यों ना चला जाए, एकदम गले में फंस जाता है ना। एक मानी तो इसका ये बना कि सलक ना हो की ज़मीर कुरान की तरफ है, तो बड़ा ही डरा देने वाला मानी है कि ये कुरान इनके गले की फांस बन गया, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, क्योंकि ये कुरान तनकीद करता है। सच्ची बात है, करता है कुरान, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। हाँ, ये कुरान नज़ीर है, ये वार्नर है, ये डराता है, ये कहता है शराब हराम है, ये कहता है चोरी हराम है, ये कहता है कि सूद हराम है, अब क्या करें, ये गले की फांस बन गया। एक मानी है। और सलक ना हू की ज़मीर को बाजने का तकजीब और तकफीर, ये जो कुफार ने इस कुरान का इनकार किया ना, ये अब इनके गले की फांस बन गया। कैसे? चू के पहले इनकार कर चुके हैं तो अब कैसे माने, ये भी शैतान का एक फंदा होता है। मिसाल देती हूँ आपको छोटी सी। आपको पता है कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आई हुई है और आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब किसी वजह से इनकार कर देता है कि मैंने इस कंपनी का माल लेना ही नहीं है, या मैं नहीं लूँगी स्टोर से। आहिस्ता आहिस्ता एक से सुनते हैं दूसरे से, बड़ी अच्छी मशीन है, बहुत अच्छी है, डिसेंट है, क्या करते हैं आप, जाके ले आते हैं? या आप ये कहते हैं कि चूंकि मैंने कह दिया था मैंने नेशनल कंपनी की कोई मशीन नहीं लेनी, अब मैं नहीं लूँगी, अपना फ़ायदा लेते हैं। ये है दुनियावी मामला। लेकिन जब इंसान कुरान और दीन की किसी बात पे आता है ना, तो जब सारी अंदर की गिरें खुल जाती हैं, तो शैतान क्या डालता है? नहीं, मैं नहीं फिर ले सकती इसको। फिर शैतान क्या डालता है? नहीं, जब मैंने कह दिया था मैंने नहीं लेना तो मैं नहीं लूँगी। और ये भी एक किस्म की स्टबननेस है। आप लें कि ना लें, नेशनल कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है। चले, एक स्त्री आपने ले ली, शायद उनकी कोई 1% सेल बढ़ गई, ना लेते तो 1% कम होती। नुकसान किसका था अगर आप उस प्रोडक्ट से महरूम रहती? आपका नुकसान था। तो गोया कि इसको आप कह लीजिए कि जब एक दफ़ा ना कह दिए तो हाँ क्या, कुरान के इनाद की वजह से अब वो इस किताब की तरफ आते ही नहीं है। शक है, बेचैन है, बहुत सारे इसके मुख्तलिफ मानी बनते हैं। सबका खुलासा ये है कि पहले इनकार के बाद अब मैं ना मानू वाला रवैया, और मुजरमीन से मुराद मुशरिकीन मक्का ख़ास तौर पे, और आज हर वो बंदा जो इस किताब से तकजीब की हद तक दूर हो। अल्लाह अकबर। इसीलिए आगे फरमाया ला यूमिनूना बिही, ये नहीं मानेंगे। कब तक? हत्ता यरबुल अज़ाब अलीम, जब तक कि ये दर्दनाक अज़ाब ना देख लें। ये दर्दनाक अज़ाब क्या है? ये दो किस्म का अज़ाब है। नंबर एक, इस तकजीब कुरान की वजह से दुनिया में कोई दुख आए, बीमारी आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए, सदमा पड़े, कोई इनकी फसल ख़राब हो जाए, कोई इनकी फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई भी ऐसा अजाब आ जाए, उसको देखकर फिर इनके अंदर की आंखें खुलेंगी कि हमने ये नाफरमानी की हुई है। एक मुराद। और दूसरा, यरबुल अजाब अलीम से मुराद मौत और मौत के बाद की तकलीफ है। क्या अब इनको बस मौत का फरिश्ता देखकर एहसास होगा कि हमने ठीक नहीं किया? इस तरह से आप देखिए, किसी को आप नाहक बुरा कहते हैं, उसके फौरन बाद क्या होता है? दिल पे बोझ पड़ता है, बहुत पड़ता है। आप खुद देखती होंगी, बाद जब आप अपने बच्चों को किसी और ग्रज में गुस्से हो देती हैं, या उस बच्चे को गुस्से हो गई जो बेचारा कुछ करता ही नहीं, और हमारा वो कल्चर है कि जो हमारे करीब होता है उसी बच्चे को थप्पड़ मार देते हैं, बाद में पता चलता है कसूर किसी दूसरे बच्चे का था। जो ही आपको पता चलता है कि मैंने इस मासूम को गुस्से से पकड़ा भी है, अगर इसके निशान पड़ गया तो वजह इस ये नहीं था, कोई और है, उसके बाद क्या गिल्ट होता है, तकलीफ होती है ना। बिल्कुल आप उस बच्चे की जगह कुरान को रख लें। जब लोग इस किताब के साथ वो रवैया करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसका दिल पर गिल्ट पड़ता है, इसी को फिर बाद में हम डिप्रेशन कहते हैं, बोझ, फिर चिड़चिड़ापन, फिर तकलीफ़ का मामला। ये ना हो वह ना हो, आप चाहें तो सूरह यूनुस की आयत 96 और 97, हिजर 8 और सूरत मोमिन की आयत 85 पढ़ लें, आपको यही बात उसमें मिलेगी कि जब लोग इस किताब से दूर जाते हैं तो ये किताब उनके लिए बोझ बन जाता है। यही हालात है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी को अपने कल्चर का लजीज खाना को पेश करे और ऐसे ही दिल के किसी बुग़ज़ की वजह से जुटला दे मुझे नहीं चाहिए, और बाद में उसको उबली हुई नूडल खानी पड़े, फिर रोएगा ना। तो इस किताब को झुटला कर हमारा ही नुकसान होगा। एक बार जिसने इस कुरान का टेस्ट चख लिया, उसको चैन अब सिर्फ इसी में आएगा। करते क्यों इनकार लोग? तकब्बुर, बड़ाई, हुब्बे दुनिया। लिहाजा अल्लाह ताला कहते हैं फयात यहुम बख्तन, वो अचानक इन पर आ जाएगी, क्या या मौत या अजाब या पकड़, वहुम ला यश उरून, और इनको तो गुमान भी नहीं होगा। और वाकई उनको नहीं पता चलेगा ये हमारी किस करनी की भुगती है हमने। देखिए ये जो ला यशुरून ना, बस इसको समझ लें। मिसाल देती हूँ, कहना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना है, अगर आजकल किसी को स्नीजिंग हो रही होगी तो क्या कहेंगे? एयर फीवर यहाँ कहते हैं लोग, नॉर्वे में इसको पोलन एलर्जी कहते हैं। ज़रा बाहर धूप बारिश आएगी फिर से फिर कहेंगे नहीं मौसम बदल रहा है तो छींकें आ रही हैं। अमूमन हमारा मिजाज है ना, कोई भी बीमारी तकलीफ आती ना हम फौरन उसको ले लेते हैं, या मौसम पे, या खाया था खट्टा खाया था, कोई आपको आके के बेटा पेट में दर्द है, आप सोचे ना आपका बच्चा, मम्मी पेट में दर्द है, पहला सवाल आप क्या करती हैं? आज से क्या कहना है, क्या किया था कि ये तकलीफ आई है? ये है वाहुम ला यशुरून। बात कितनों को समझ आई है? हम क्या खाया, क्या किया, लिया दिया, बंदों चीज़ों में खोए रहते हैं, कुछ नहीं, मैंने भी तो वही खाया था, मुझे क्यों नहीं हुआ, तुम सोचो तुमने किया क्या। ये बंदे के ऊपर अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इंतकाम होता है कि उसको पता भी ना चले कि मेरे ऊपर ये मुसीबत आई क्यों है। कोई सोर्स नहीं दिख रहा, कोई रीज़न नहीं दिख रही, पर यकूलु हल नहन मुनज़रून, इस वक्त ये कहेंगे क्या हमें मोहलत मिल सकती है, ये उस वक्त दुहाइयाँ देंगे, किसी तरीके से अजाब तो टल जाए, थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। क्या आपने कभी बेड रिडन लोगों को नहीं देखा, आंखों से ऐसे आंसू गिरते हैं उनके, और कहते हैं कभी एक नमाज खड़े होके पूरे रुकू और सजदे के साथ पढ़ सके। मुझे एक ऐसे शख्स की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है कि जो अपनी ज़िंदगी में ये कहते थे लाड में कि कोई बात नहीं, ज़रूरी तो नहीं सारे पर्चों में पूरे ही नंबर आए, ना भी कोई नमाज़ पढ़ेंगे तो कोई नहीं, बाकी भी तो अच्छे काम है, और अल्लाह ने एक ऐसी तकलीफ़ में उनको डाल दिया कि हड्डियों की तकलीफ़ थी, बैक बोन का प्रॉब्लम था। 6 फुट का इंसान शायद आखिर में 3-4 फुट का घिस के दुनिया से गया, उनकी हड्डियाँ घुलती थी। तो मुझे एक मंजर याद है, जब कभी उनको देखा था तो आंखों से इतने मोटे मोटे उनके आंसू थे, और वो सूरत मुद्दसिर की वायत पढ़ते थे। सूरत मुद्दसिर है गालिबन, यह क़याम है, चेक कर सकते हैं हम लोग, कि जिसमें यह है कि युदउन इलस सुजूदी वहुम सालिमुन, कि जब इनको बुलाया जाता था सजदों की तरफ जब ये सही सालम थे, लेकिन आज नहीं कर सकते, तो कहते थे अब दिल करता है कभी खड़े होकर रुकूं झुकूं। अपने ऊपर तो लेके सोचें, जो मज़ा आता है खड़े होकर रुकूं करके, सजदा करके, जो ज़मीन पे सर रख के मज़ा आता है, यकीन करें वो जिसको कहते हैं ना ढेरी ढा दो। बाज़ दफ़ा मजबूरियों में लोग कुर्सियों पे पढ़ते हैं, लेकिन क्या उनको वो वक्त याद है जब वो सजदे करते थे ज़मीन पे? आज भी आप देखिए कि नॉन मुस्लिम बूढ़े इस बात पे हैरान है कि मुसलमान बूढ़े 70-80 साल की उम्र में भी इतने चाको चौबंद क्यों हैं। आपको पता कि 90% नॉन मुस्लिम बूढ़े 60-70 के बाद झुक नहीं सकते, और उनके खुद डॉक्टर्स उसकी वजह बताएंगे झुकने की आदत नहीं है। हाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिट फाट रखें और एक्सरसाइजेस कर लें उनकी और बात है, और ये जो हम नमाज पढ़ते हैं दिन में कई दफ़ा, ये हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ला देती है, तो ये तो मज़ा ही और है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उस वक्त इनको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कुछ क्या, और फिर कहेंगे हाय थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं हमें, हाय अल्लाह एक दफ़ा तो ऐसा कर लो। एक सहाबी थे तो जब दुश्मनों ने उनको पकड़ा तो मारने का ऐलान कर दिया, तो उस दौर में रिवाज भी था और कर्टसी थी कि मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश का, अच्छा आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझे 2 नफिल पढ़ने दो। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नमाज़ पढ़ लो। जो ही जायनमाज़ पे खड़े हुए तो आंखों से टप टप आंसू थे, फिर सजदे में गए, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेरा तो कहा वल्लाही मेरा दिल कर रहा था कि मैं इतनी लंबी नमाज़ पढ़ूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन इस बात के डर से मैंने नमाज़ मुख्तसिर पढ़ी कि तुम ये ना समझो कि मैं मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा हूँ। अफ अभी अजाब ही ना यस्ताजिलून, क्या बस ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? बार बार की नाफरमानियाँ, बार बार का इस किताब के साथ डिस्क्रिमिनेशन, इसको रिजेक्ट करना, क्या ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इन पर अजाब ले आए? हर रोज़ के ड्रामों से तंग आ गया, अब अजाब ला के दिखाओ। तफरई तमत्वाना हमसे नींद, तो क्या आपने देखा अगर हम इन्हें चंद साल और भी फ़ायदा उठाने दें, चलो भाई छोड़ दो फरिश्तों अजाब को ले जाओ, कितने साल सुमजा हम अकानुयोदून, फिर वो इन पर अजाब आ जाएगा जिसका इनसे वादा किया जाता है, कितने साल और जियेंगे, बीमारियों से बच जाएंगे, खा लेंगे दवाइयाँ, एक दिन तो आएगा। तो ये ना सोचें कि कब मरना है, ये सोचें कि मरने के बाद क्या होना है। सिनीन सनत उनकी जमा, और अफराईता क्या पस तूने देखा, मुराद है कि बताओ मुझको, खबरदार अखबिरनी के मानों में, या क्या देखा तुमने। अल्लाह अकबर। सुम्मा जा हुम्मा कानू युअदून, और होगा क्या, मा अग़नान हुम्मा कानू युमत्ताउन, तो कुछ काम नहीं आएगा इनके वो सब कुछ जिससे वो फ़ायदा पहुंचाए जाते थे। इसको दो तरह समझ लें, मा नाफिया होगा तो मतलब क्या है, नहीं काम आएगा इनके वो जो कुछ फ़ायदा पहुंचाए जाते थे। क्या कुछ फ़ायदा पहुंचाए जाते हैं, बस अपनी मंथली स्लिप देख लीजिए, अगर आप खुद काम करते हैं और अगर आपके शौहर करते हैं तो उनसे ही पूछ लें कि क्या क्या फ़ायदे हुए इस महीने में, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी टैक्सी चली और कितना पे स्लिप बना और कितने आवर्स घंटे किए। अल्लाह कहते हैं जितने भी थे माँ अगनान हम, ये बेनिफिट नहीं देंगे। और अगर माँ को इस्तेफहामिया कह दें, क्वेश्चनिंग, तो फिर मतलब क्या है, शौहर को बेदार करो, क्या काम आएगा इनको जो कुछ ये फ़ायदे पहुँचाए जाते थे। क्योंकि दुनिया की हर चीज़ जो ना टाइम बाउंड है, एक्सपायर हो जाएगी, मौत के साथ दुनिया की हर नेमत चली जाएगी। सूरह कहफ का वो वाक्य याद कर लीजिए, बाग वाला कहता था अमां तभी दहाजी अबदा, आई डोंट थिंक कि ये मेरा बाग कभी भी बर्बाद होगा, अगर कभी गया वाला ही रो दे तो लाजी तो खैर मिनहा मुनकलबा, अगर बिलफर्ज में क़यामत के दिन उठाया गया मुझे ये सब वापस मिल जाएगा। हदीस में आता है कि दुनिया में जिसको सब नेमतें मिली होंगी वहाँ सिर्फ अजाब का एक झोंका दिलवाया जाएगा और पूछा जाएगा बता क्या नेमतें थी, तो उसको एक नेमत भी याद नहीं होगी। और इसका अपोजिट भी हदीस तवील आपको कई दफ़ा सुनाई है, आज चूंकि अजाब आ नहीं रहा ना तो गलतफहमी का शिकार है। सूरह बकरा आयत 96 में भी हमने पढ़ा था, वमा हुआ बिमुज़ह्ज़िही मिनल अज़ाब यौमरा, लंबी उम्र का पा जाना इनको उस अजाब से नहीं बचा सकता कि अल्लाह को भूल ही जाएंगी इनकी बचपन की खताएं और गलतियां। सारी जिंदगी दुनिया दुनिया जमा करते रह के कुछ नहीं मिलेगा।